अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, प्रोग्राम पेरेंटिंग के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। और जैसे कि आप जानते हैं, इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं कुछ के बच्चों को कैसे हैंडल किया जा सकता है, उनके मुख्तलिफ इश्यूज़ को कैसे हैंडल किया जा सकता है। कभी हम बात करते हैं कि बच्चों के खाने की हैबिट को कैसे डिवेलप किया जा सकता है, कभी हम बात करते हैं कि टाइम टेबल जो है वो किस तरह सेट किया जा सकता है। आज भी हम मुख्तलिफ बातों को इस प्रोग्राम में हम लेकर आएंगे कि बच्चों की हैंडलिंग कैसे हो सकती है। आप सोच रहे होंगे कि किस किस्म की हैंडलिंग, तो लिसनर्स बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिनको हम फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं, लेकिन उनका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। आज भी मौजूद रहेंगी हमारे साथ डॉक्टर कंवल कैसर, और इनसे हम इसी सिलसिले में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैम।
वालेकुम अस्सलाम।
जी मैम, जैसा कि आज हम बात करेंगे कि बच्चों को मुख्तलिफ मामलात में किस तरह हैंडल किया जा सकता है, और लिसनर्स भी सोच रहे होंगे कि क्या ऐसी बातें हैं जिनकी हैंडलिंग के बारे में आज बात होगी। तो लिसनर्स बहुत सारी बातें हैं, और पहला सवाल ये है, तो एक जनरल सी बात है कि अक्सर पेरेंट्स जो हैं बच्चों को साथ लेकर कहीं जाते हैं, किसी के घर जाते हैं, तो बच्चों की एक आदत होती है कि वहां जाकर चीजों को छेड़ना शुरू कर देते हैं किसी के घर जाकर, और बास तो ऐसे भी होते हैं कि वहां से चीजें उठाकर छुपाकर अपने घर भी वापस ले आते हैं।
बिल्कुल।
तो ऐसे बच्चों की तरबियत के मामले में क्या किया जाए?
पहले निदा ये बात करने की जरूरत है कि वालदैन करते गए, जब बच्चा ऐसी कोई चीज उठाता है तो वहां तो शर्मिंदा बैठे रहते हैं, और जैसे ही घर आते हैं या गाड़ी में बैठते हैं तो उसके बाद पहला रिएक्शन ये होता है कि उसको खींच के लगाते हैं और बहुत उस पर चीखते हैं, चिल्लाते हैं। तो बात यह है कि बच्चे ने काम तो गलत किया है, और जाहिर है आपने उसकी इसलाह भी करनी है, लेकिन उसकी इसलाह का ये तरीका नहीं है। आप ये देख भी लें कि जब हम उनको मार भी लेते हैं, उनको डांट भी लेते हैं, उनको बहुत से कोसने भी दे देते हैं, ताने भी दे देते हैं कि तुमने मेरी इतनी इंसल्ट करवाई, और फलां क्या सोचता होगा कि हमने अपने बच्चों की तरबियत नहीं की, हम उसको अपना फेलियर देखते हैं, और इसलिए हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाते हैं। करने का काम उसमें ये होता है कि आपको जब पता है कि आप किसी के घर जा रहे हैं या आप किसी भी काम से जा रहे हैं किसी जगह पे, और आपका तो वो इंटरेस्ट है उस जगह जाने का, आपने किसी से मिलना है, किसी से बात करनी है, कोई चीज़ खरीदनी है, किसी से कोई ज़रूरी मामलात करने के लिए आप जा रहे हैं, लेकिन बच्चे का कोई इंटरेस्ट नहीं है। बच्चे को आप क्यों लेके जा रहे हैं? इसलिए कि बच्चे को आप अकेला नहीं छोड़ सकते। अब बच्चे का जब कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, ना वो आपकी बातें सुन के उसमें कोई वो हिस्सा ले रहा है, ना कुछ और काम कर रहा है, अब वो वहाँ बैठा हुआ है तो उसको क्या नज़र आ रहा है? उसको वो ड्राइंग रूम में पड़ी हुई खूबसूरत चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो वो फिर उनको खिलौनों की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। तो अगर वालदैन ये करें कि कहीं पर भी जा रहे हों, उस जगह के मुताबिक और बच्चे के नेचर के मुताबिक कोई ना कोई मवाद अपने साथ रखें, कोई खिलौना रख सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि आप वो फौरन उसको दें, लेकिन आप उसको जब वहाँ पहुँचें तो बच्चे को दे सकते हैं, या आप उनके लिए कोई कॉपी, पेंसिल, छोटी सी नोट पैड, कोई कलर्स, 2-3 मार्कर अपने पर्स में रखें, और जब आप वहाँ पहुँचें और लगे कि बच्चा कुछ चीज़ों को छेड़ने लगा है, तो बिल्कुल भी आप मेज़बान का या किसी और शख्स की प्रेजेंस पे शर्मिंदा ना हो, ये ना सोचें कि वो क्या सोचेगा या कैसा बुरा लगेगा। आपने अपने बच्चे की तरबियत करनी है, आप जाएं बच्चे के पास बैठें और बच्चे को कहें कि बेटा हम इस चीज़ को नहीं छेड़ते, ये आप कॉपी ले लें और ये पेन ले लें और आप ये ड्रॉ कर लें, या यहाँ जितनी चीज़ें पड़ी हुई हैं आप उनके नाम लिख लें। छोटा बच्चा है तो उसको उसका खिलौना दे दें और आप उसको कहें कि इससे खेलें। और इसी के साथ साथ अगर आपके घर में मेहमान आते हैं, कुछ लोगों को घर सजाने का बहुत शौक होता है, और इस सजावट के साथ जैसे ही उन्हें पता चलता है कि कोई ऐसा मेहमान आ रहा है जिसके साथ 2-3 छोटे बच्चे हैं, तो उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है कि मेरी सारी चीज़ें वो ख़राब कर देंगे। तो अगर आप अपने घर में भी ऐसी बास्केट रख लें, छोटी सी टोकरी रखें, और उस टोकरी में आपने बच्चे की इसी तरह मुख्तलिफ खिलौने रख लिए, आम से खिलौने रख लें, लेगो रख लें, कुछ टॉयज ऐसे रख लें जो उसमें पड़े हुए हों, और आपने अपने घर के बच्चों को भी बताया हुआ हो कि भई ये मेहमानों के लिए टोकरी है और इसको हम शेयर करेंगे जब भी कोई आएगा। और उससे क्या होता है कि वो बच्चा जब आ रहा है आपके घर में या कहीं जा रहा है और उसके पास ऐसा कोई सामान है तो उसमें मसरूफ हो जाता है, और आपको वो जो डांटना और उस पर चीखना चिल्लाना वो अमल कम हो जाता है।
और इसके अलावा मैम, देखने में ये भी तो आया है ना कि पेरेंट्स, माँ या बाप बच्चों को कोई चीज़ एक्सप्लेन नहीं सही तरह कर पा रहे होते, तो उसके लिए क्या ऐसी स्ट्रेटेजीज अपनाई?
मैंने अक्सर ये देखा है निदा कि बच्चों को ना हम लोग जैसे फर्नीचर को नहीं ट्रीट करते, बिल्कुल उसी तरह से करते हैं। कैसे करते हैं कि मसलन जैसे कुर्सी को
उठा के कहीं
रख दिया, और कुर्सी को हम बताते नहीं है कि मैं तुम्हें इसलिए उठा रही हूँ कि तुम्हें यहाँ से मसलन मुझे यहाँ जरूरत है या तुम रास्ते में हो।
यानी यहाँ पे ये भी कहा जा सकता है कि ना अपनी फीलिंग्स उनको बताते हैं ना उनकी फीलिंग
समझते हैं। तो हम ये करते हैं कि जब उनको बस इस तरह से उठाया और उठा के कहीं रख दे जैसे फर्नीचर को रखा, तो बच्चा तो इंसान है ना, बेशक आप समझ रहे हैं कि उसको यहाँ नहीं बैठना चाहिए था, यहाँ नहीं खड़े होना चाहिए था, यहाँ ये काम नहीं करना चाहिए था, आपने उसको हाथ से पकड़ा और दूसरी तरफ कर दिया। बच्चे का अगर दिल चाह रहा है किसी एक जगह जाने को, वो दोबारा वहीं आ जाएगा। आप उसको फिर खींच के वहां से हटाएंगे, फिर वहीं आ जाएगा। वो लगातार वो करेगा और फिर वही आपका रिएक्शन होगा कि आप या उसको मारेंगे या उस पर आप चीखें चिल्लाएंगे। तो असूल क्या होता है, बच्चे के आई लेवल पे आके, उसके लेवल पे आके, उसकी आंखों में देख के उसको आप बहुत प्यार से लेकिन एक फर्म तरीके से बताते हैं कि बेटा मसलन आप ये काम नहीं करेंगे, और वजह बताते हैं क्योंकि इससे आपको चोट लग सकती है, या ये कि ये चीज हमारी नहीं है, हम किसी की चीज नहीं छेड़ते हैं, या ये कि हम अभी इस वक्त ये काम नहीं कर सकते, हम मुझे फिर सफाई करनी पड़ेगी, मैं थकी हुई हूँ। अपनी फीलिंग्स, उसकी फीलिंग्स, उससे भी आप पूछ सकते हैं कि आप क्यों इस चीज को बार बार छेड़ रहे हैं, या मैंने जो बात आपको बताई है कि आपको समझ नहीं आ रही, क्योंकि हमारा ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि हम बच्चे से कभी समझें या पूछें। कई दफा खवातीन का मैंने देखा है कि उनसे बात करो तो वो कहती हैं इसको क्या पता चलेगा, इसको क्या समझ आएगी, या ये कि ये तो बहुत ढीठ है, या ये तो बहुत होशियार है, या ये तो मुझे इसी तरह से तंग करता है। तो ऐसी बात नहीं है, उसके जरा से एहसासात को समझते हुए बताएं। और एट द सेम टाइम जैसे आपने कहा है कि माँ के भी तो अपने इमोशंस हैं, कई दफा हम सिर्फ इसलिए डांट रहे हैं या तंग कर रहे हैं या उसको सही हैंडल नहीं कर रहे बच्चे को। मसलन आपके सर में दर्द हो रही है, अब बच्चे ने आके आपसे कुछ कहा, या बच्चा पास खड़ा हुआ है और दूसरा कोई भाई बहन है उसके साथ और वो लोग शोर मचा रहे हैं जो हमें शोर लग रहा है क्योंकि हमारे सर में दर्द है, नहीं तो वो तो बच्चे आपस में खेल रहे हैं, अपने आप को मसरूफ रख रहे हैं। तो अब माँ जो है उसको क्या करना चाहिए, उसको चाहिए कि बच्चे को उस वक्त बताए कि बेटा मेरे सर में दर्द है, मैं आराम करना चाहती हूँ थोड़ी देर, क्या आप यहाँ से जाके मसलन साथ वाले कमरे में बैठ सकते हैं, या अगर बच्चे छोटे हैं और आपको अपने सामने ही रखना है, आप उनको अपनी नज़र से दूर नहीं कर सकती, तो उनको किसी ऐसी एक्टिविटी में इंगेज किया कि शोर कम हो, और उनको बताया कि मैं बहुत थकी हुई हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं रेस्ट कर रही हूँ, आप थोड़ा सा आहिस्ता या आराम से बोलें। आपको 2 या 3 दफा उनको रिमाइंड करना पड़ेगा, लेकिन ये बहुत इफेक्टिव तरीका है।
मैम अक्सर ये भी तो होता है ना, सिर्फ इस मामले में नहीं, बाज़ूकात ये होता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए वो कुछ नहीं कर पा रहे होते फाइनेंशियली तौर पे भी,
बिल्कुल,
तो लेकिन वो कर रहे होते हैं बच्चों के लिए किसी ना किसी तरह। इस तरह बच्चों में ये एक आदत डेवलप हो जाती है कि हमारे पेरेंट्स हमें हर चीज दे देंगे, तो यहाँ पे भी फीलिंग का डेवलप करना जरूरी है ना,
बहुत ज्यादा जरूरी है। कई दफा हम क्या करते हैं कि मसलन बच्चे आजकल आप देखें कि ये चिप्स के पैकेट और बाजारी चीजें बहुत ज्यादा खाते हैं, अब ना तो ये सेहत के लिए अच्छी हैं और इनमें पैसे भी बहुत ज़ाया होते हैं। आप किसी भी काम के लिए बाजार जाएं तो क्या होगा कि आपके बच्चे ने डिमांड करना ही करना है, तो जहां आपने अगर 200 का खर्चा था तो वो कम से कम 400-500 पे खर्चा चला जाएगा।
और अल्टीमेटली ये भी होता है कि बच्चे कहते हैं कि आप तो हमारी जो है जरूरत की चीजें नहीं हमें,
आप मिलेगी नहीं कुछ देते, मेरे फलां दोस्त इतना कुछ लेता है, उसकी अम्मी इतना कुछ लेके देती है, सब बच्चे यही कह रहे होते हैं और हम इसी प्रेशर में करते चले जाते हैं। तो अब होता क्या है कि जब आपको ये परेशानी भी होती है कि अब आपने बाजार भी जाना है या कहीं से कोई चीज भी लेनी है, बच्चा भी साथ है, बच्चा मांगेगा भी, आप उसे ले भी देंगी, अपना खर्चा भी ज्यादा करेंगी, और अब आपको परेशानी ये कि मेरा बजट फिर खराब हो रहा है। अच्छा, आप ये एक्सप्रेस कभी नहीं करते कि मेरे पास पैसे नहीं है या मेरा बजट खराब हो रहा है। हम उसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं, बच्चों को डांटना शुरू कर देते हैं, तुम लोग गंदी चीजें खाते हो और तुम लोग बीमार हो जाओगे और तुम लोग अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते, तुम अल्लाह का शुक्र नहीं अदा करते, नेमतों की नाकदरी करते हो। ठीक है, वो सब बातें अपनी जगह जायज हैं जो कि बतानी चाहिए बच्चों को, लेकिन इस मौके पे और आप चाहे पहले बता दें घर से निकलने से पहले कि मेरे पास पैसे थोड़े हैं, मैं आपको 10 रुपए से मसलन 10 रुपए या 15 रुपए फी बच्चा से ज्यादा कोई चीज नहीं लेके दे सकूंगी और ना आपने वहां मुझसे मांगनी है। आपने पहले ही उनको बता दिया कि मैं इस वक्त इतना ही अफोर्ड कर सकती हूँ। लेकिन इस बात में ये भी याद रखना है कि इसका ये मतलब नहीं कि आप रिजिड ही हो जाएं, कि आपने एक दफा बच्चे को बता दिया आपके यहाँ मेरी तो छुट्टी होगी, अब कुछ भी हो मैंने हर दफा उनको वही 10 रुपए की चीज लेके देनी है। अगर उनकी जरूरत है या आपके पास पैसे हैं या कोई ऐसी नीड है उस टाइम की कि आपको लगता है कि मुझे बजट बढ़ा देना चाहिए बच्चों को जो भी देना चाह रही हूँ, तो आपको फिर देना चाहिए उस चीज को।
और इसके अलावा मैम ये भी तो होता है कि हम बच्चों को हर एक की रिस्पेक्ट करना नहीं सिखा रहे होते। मसलन ये होता है कि हमने कह दिया कि आपने मामू की रिस्पेक्ट करनी है या चाचा की रिस्पेक्ट करनी है, लेकिन उसके अलावा दुनिया में जो बड़े लोग हैं उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे होते। इवन बाद लोगों के घर सर्वेंट्स होते हैं, उनकी रिस्पेक्ट नहीं बच्चे कर रहे होते।
देखिए उसमें तो निदा रोल मॉडलिंग है। जब आपने बच्चे को बहुत सा बिहेवियर सिखाना है तो आपकी रोल मॉडलिंग बहुत जरूरी है। अगर आप असेस करना चाहते हैं कि आप अपने नौकर से किस टोन में बात करते हैं, मुलाजमीन आपके पास है उनसे आप किस तरीके से बात करते हैं, किस तरीके से डील करते हैं, तो आप ऐसे कीजिए कि सिर्फ एक घंटे बल्कि आधे घंटे के लिए आराम से एक कुर्सी पे बैठ जाएं और आप अपने बच्चे को उस मुलाजिम के साथ थोड़ा सा डील करने दें। जिस तरीके से वो बात कर रहा होगा वो आपका तरीका होगा, जिस तरीके से वो बोल रहा होगा, चीख रहा होगा या जो भी बात कर रहा होगा, वो आपको साफ नजर आ जाएगा कि मैं बिल्कुल इसी तरीके से उसके साथ डील करती हूँ। आपको लगेगा कि मेरी आवाज़ बच्चा बोल रहा है। वहीं से अपने आप को करेक्ट करें, वहीं से अपनी इसलाह करें। अगर आपको आदत है हर एक को सलाम करने की, तो आपको बच्चे को कहना नहीं पड़ेगा कि बेटा हर एक को सलाम करो, बच्चा आपको देख के सीखेगा। अगर आप हर एक से अच्छी तरह तमीज के साथ मेहरबानी करके या प्लीज कह के बात करते हैं, लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं किसी काम पे, तो बच्चा भी आपका आहिस्ता आहिस्ता वो सीखेगा। ये जरूर याद रखना है कि बच्चे बड़ों के सामने थोड़ा सा शाये हो जाते हैं। मसलन ये कि उनको वैसे आदत हो सकती है आपसे, उन्होंने बार बार सीखा कि आप सलाम करते हैं, लेकिन अगर दो तीन लोग खड़े हैं, बुजुर्ग भी खड़े हैं, और हम अगर बच्चे को बार बार कहें कि सलाम करो सलाम करो, और वो बच्चा बिल्कुल ही नहीं सलाम करता, और हम कहते हैं या अल्लाह इसका क्या मसला है, घर में तो ये वैसे हर एक को सलाम करता है और यहाँ ये सलाम ही नहीं कर रहा, यहाँ ये हाथ ही नहीं मिला रहा, यहाँ ये अपनी कुर्सी से नहीं उठ रहा, क्योंकि बच्चा कई दफा उस सोशल इंटरेक्शन को नहीं समझ रहा होता, या वो इतने सारे बड़े लोगों को देख के जरा सा परेशान, जरा सा विड्रॉ कर जाता है, उसका दिल नहीं चाह रहा होता उस वक्त बात करने को। उस सिचुएशन को जरूर समझना है, लेकिन बच्चों के सामने रोल मॉडलिंग बहुत अच्छी तरह से होनी चाहिए कि हम अपने बुजुर्गों को जो है अदब से उनके साथ डील करें। वो एक बड़ा मशहूर एक कहानी है कि एक बच्चा था और उसके दादा फौत हुए, तो दादा के पास एक प्याला था और बहुत ही टूटा हुआ सा जिसमें वो पानी पीते थे, तो बच्चे ने भाग के जाके वो प्याला पकड़ लिया, तो उसके वालिद ने कहा कि बेटा तुमने ये क्यों पकड़ लिया, तो ये तो पुराना खराब सा हो गया, तो ये फेंक दो अब। तो दादा बू तो नहीं है अब, तो उसने कहा कि बाबा इसको मैं संभाल के रखूंगा, जब आप बूढ़े होंगे फिर मैं ये आपको दूंगा कि आप इसमें पिया करेंगे। तो कहने का मतलब ये कि हम जिस तरह से अपने बड़ों के साथ डील करेंगे, हमारे बच्चे वही चीज सीखेंगे। हमें अपने घर में अपने बुजुर्गों को इज्जत देनी है और बच्चों को उनके सामने तरीका बताना है। उसमें भी हम फिर ये करते हैं कि अगर कोई बुजुर्ग आराम कर रहा है या कोई बीमार है घर में, तो हम बच्चे अगर खेल रहे हैं, शरारत कर रहे हैं, चीख रहे हैं, तो हम उनको डांटना शुरू कर देते हैं। आपने डांटना नहीं है उस वक्त भी, आप उनको उन बुजुर्गों की खिदमत पे लगाएं। मसलन दादा अबू को जाओ जाके उनकी स्टिक ला दो, अच्छा दादी अम्मा को पानी पिला दो, और उनसे छोटे छोटे काम जो हैं बहुत सारे करवाएं। कई दफा हम खुद थक जाते हैं, हमसे बहुत से काम मैनेज नहीं हो रहे होते, किचन भी देखना है, बच्चों को पढ़ाना भी है, हस्बैंड की जरूरियात हैं, मेहमान आ रहे हैं, ससुराल के और लोग हैं, और जो बुजुर्ग होंगे घर में उनकी अपनी एक डिमांड होती है। उन सारे कामों में बच्चों को इंगेज करें कि आपने चेक रखना है कि दादा अबू ने ये काम कर लिया, आपने चेक रखना है कि नानो जब आ रही हैं तो हम ये काम करेंगे। उससे क्या होगा कि वो जो डांटने का एक अमल होता है जिसमें हम उनको सिर्फ एक लेक्चर दे रहे होते हैं कि आप बड़ों की भी इज्जत नहीं करते और किसी का ख्याल नहीं करते, वो भी कम हो जाता है। दूसरा ये कि जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए भी मैं एक जरूर बात कहूंगी कि हम लोग जब उस जगह पे पहुंचते हैं कि हमसे बहुत छोटे बच्चे हैं, तो हम उनको सिखाते नहीं है कुछ भी। हम क्या करते हैं, हम सिर्फ हर जगह बैठ के ये कहते हैं कि भाई आजकल के तो बच्चे इतने बदतमीज और किसी की उनको इज्जत करनी नहीं आती। आप अगर उनसे चाह रहे हैं कि वो आपकी इज्जत करें, तो एक बहुत अच्छा तरीका है सिखाने का, उनको अपने पास बिठाएं, उनको प्यार करें, उनकी किसी बात पे तारीफ करें, उनको अपनी जिंदगी से बहुत से वाकयात सुनाएं, आपने क्या क्या चीजें कैसे सीखी, क्या क्या वक्त कैसे गुजारे, ताकि वो बच्चे आपसे अटैच होके सीखें। जो इतना लर्निंग एक्सपीरियंस होता है, देखिए ना जो बुजुर्ग लोग हैं उन्होंने कितनी जिंदगी गुजारी होती है और कितने एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो वो अपने आप से खुद बच्चों को फिर कई दफा दूर कर लेते हैं।
और इसके अलावा मैम ये भी तो अक्सर होता है ना कि बच्चे अक्सर चीजें तोड़ देते हैं।
बिल्कुल,
लाइक अगर बच्चे ने कोई ग्लास या प्लेट तोड़ी है, तो जब हमने उनको सजा नहीं देनी, तो किस तरीके से उनको इस तरह के काम से, क्योंकि बच्चे बाजू का जानबूझ के भी तोड़ते हैं, रोका जा सकता है।
रूल्स आपने बच्चों को जरूर बताने, इसके लिए बहुत अहम चीज ये होती है कि पहले से आप बच्चों को बताएंगे कि वो कौन सी चीज घर में इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सी नहीं कर सकते। मसलन ये कि अगर आपको पता है कि बच्चा छोटा है और उससे शीशे का गिलास हैंडल नहीं होगा, तो आप उसको पहले ही बता दें कि आपने जब पानी पीना है तो आपका ये वाला गिलास है जो कि प्लास्टिक का है और आपने उसमें पीना है, या ये कप है जिसमें आपने पीना है। वो बच्चा यकीनन दोबारा शीशे के गिलास की तरफ लपकेगा। फिर आपका अगला स्टेप ये होना चाहिए कि अगर आपको लगता है कि आपने बार बार बच्चे को बता दिया लेकिन फिर भी वो शीशे का गिलास ही उठाता है हमेशा, तो आपने शीशे के गिलास को उसकी पहुंच से दूर रखना है। अब अगर आप सामने रखेंगे और उसको ये भी नजर आ रहा है कि सब लोग शीशे के ग्लास में पीते हैं और वो बच्चा सोचता है पता नहीं मुझे ही क्यों ये दूसरा ग्लास दे देते हैं, तो वो हमेशा शीशे का ग्लास उठाएगा और अक्सर औकात उसको तोड़ देगा। तो उसको फिर बच्चे की पहुंच से दूर रखें ताकि बच्चे के पास वो मौजूद ही ना हो कि उसको लेना पड़े। तीसरी बात यह कि अगर वो बच्चा ले भी लेता है और आपके सामने ले लेता है, तो बहुत प्यार से उसके हाथ से वो ग्लास लिया और उसमें से वो पानी जो है वो दूसरे ग्लास में शिफ्ट किया और उसको कहा कि आप ये वाला ग्लास ले लें और इसमें पी लें। अब अगर बच्चा माइंड भी करता है, रोता भी है, तो उसको थोड़ी देर रोने दें, लेकिन उसको बताएं कि ग्लास आपको यही मिलेगा। या फिर एक और तरीका होता है कि उसके मुतबादल कोई ऐसी चीज ले दें जो कि ऐसी हो कि उसके लिए नुकसान देना हो। मसलन ग्लास की हम बात करें तो इसका मुतबादल हमें इस तरह मिल जाता है कि शीशे के कई दफा छोटे साइज के ग्लास मिल जाते हैं जो बच्चा आसानी से पकड़ सकता है, उसको लेके बच्चे को दे दें और उससे करवा दें। एक और चीज भी होती है कि हम क्या करते हैं कि बच्चा सीखने के अमल में होता है, बहुत सी चीजें उम्र के मुताबिक सीख रहा होता है, तो हम हर चीज पे ना उसको ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं कि लो मैं कर देती हूँ, नहीं तुम गिरा दोगे, नहीं तुम फेंक दोगे। तो ये जब हम करते हैं तो अब आप देखें कि बच्चे कई दफा बालिग भी हो जाते हैं तो बहुत से काम नहीं करते कि उनकी अम्मा ने उनको करने ही नहीं दिया होता कि कोई भी काम वो करें, और वैसे ही फिर उनको आदत पड़ जाती है। इसका बहुत अहम तरीका यह है कि आप बच्चे को हमेशा ऑफर कर दें कि आपको कोई हेल्प चाहिए तो मैं कर देती हूँ, लाइ मैं आपकी थोड़ी सी मदद कर देती हूँ इस काम में। बेशक आप वो पूरा काम ही कर रही हैं, लेकिन उसको आप ये फीलिंग देंगी कि तुम सही कर रहे हो, मैं सिर्फ थोड़ी सी तुम्हारी मदद कर रही हूँ। तो बच्चे जो है उनके अंदर फिर एतमाद आता है और वो बच्चे फिर काम सीखने की कोशिश भी करते हैं।
और इसके अलावा ये भी तो होता है मैम, अक्सर के पेरेंट्स बच्चों को बिला वजह किसी बात के ऊपर फोर्स कर रहे होते हैं कि यही करना है यही करना है, भाई यहाँ पे भी वही बात की फीलिंग्स नहीं समझ रहे होते, तो क्या करना चाहिए?
अगर आपको लग रहा है कि एक बात आप बार बार बच्चे को कह रहे हैं और बच्चा आपका नहीं कर रहा, इसको हम कहते हैं कि एक जंग की कैफियत आ गई है, आप कह रहे हैं यही करना है और बच्चा कह रहा है नहीं करना, तो उसमें फिर क्या होगा? पहले तो ये सोचें कि आम हालात में हम उसमें क्या करते हैं। आम हालात में हम यही करते हैं कि बच्चा एक बात कह रहा है, वालदा या वालिद एक बात कह रहे हैं और वो दोनों अपनी बात पे अड़े हुए हैं, और आखिरकार क्योंकि हम बड़े हैं हमारा होल्ड होता है, फिर हम यही करते हैं कि सजा देते हैं या बच्चे को लगाते हैं या मारते हैं। तो इसका हल क्या है, इसके लिए हमें क्या काम करना है? इसके लिए एक तो अहम चीज ये है कि जाहिर है जब आपने कोई बच्चे के लिए कोई भी काम आप उससे करवाना चाह रहे हैं, आप उसको कोई समझाते हैं कि ये काम इस तरीके से करना है, तो पहले बैठ के जरूर सोच लें कि क्या ये एज अप्रोप्रिएट है, क्या ये उसकी उम्र के मुताबिक है, या ये कि मैं उसको कोई ऐसी चीज कह रही हूँ जो वाकई नहीं वो बच्चा कर सकता, तो उसकी उम्र के मुताबिक आपने उससे कोई चीज डिमांड करनी है। दूसरी बात यह कि फिर भी अगर आपको लगा कि नहीं उस बच्चे का बिहेवियर भी बहुत रिजिड है, तो उससे पूछें कि अच्छा अगर आपने ये नहीं करना तो फिर आप क्या करना चाहते हैं। अगर तो वो चीज उसके लिए नुकसानदेह है तो फिर तो आप किसी सूरत में ना करने दें, नहीं तो कभी कभार अगर ऐसी कोई बात है आपको लगता है कि वो बच्चा आम हालात में वो काम कर लेता था लेकिन आज नहीं कर रहा, आज अड़ गया, तो उसको करने दें, किसी एक मौके पे उसको थोड़ा सा मार्जिन भी देते हैं, क्योंकि हम जब बच्चे को कंट्रोल करना चाहते हैं तो हम इस कदर रिजिड हो जाते हैं कि हम बिल्कुल उससे कोई बात सुनने के लिए और उसको किसी चीज के लिए जो है वो मौका नहीं देते। एक और चीज भी इसमें निदा इम्पोर्टेंट है कि बच्चे को ना थोड़ा सा किसी भी काम के लिए प्रिपरेशन टाइम देना चाहिए। तो हम उसमें क्या करते हैं कि बच्चों को कोई प्रिपरेशन टाइम नहीं देते, इस वजह से भी कई दफा बच्चे अड़ जाते हैं। मसलन आप उसको अगर होमवर्क करवाना चाह रहे हैं तो हम ये नहीं कहते कि अच्छा हम 5 बजे होमवर्क करेंगे, अभी आप खेल लो। अब 5 बजे जब आते हैं तो हम क्या करते हैं, 5 बजे उनके सर पे खड़े हो जाते हैं। वो अगर कह रहे हैं कि हमारी गेम है मामा हम थोड़ी गेम खत्म कर लें, नहीं अभी फौरन इसी वक्त, अब बच्चा भी नाराज और हम वो करते करते 6 बजा देते हैं। टाइम देखते हम कहते हैं देखो 6 बज गए, मैंने तुम्हें कहा था कितने बजे करना है। इसका तरीका यह है कि उनको थोड़ा सा प्रिपरेशन टाइम, और वो कैसे होता है कि अगर आपने 5 बजे पढ़ाना है तो एक रिमाइंडर आप उन्हें 4:30 देंगे कि 5 बजने वाले हैं, गेम खत्म करनी शुरू कर दें, फिर 10 मिनट बाद दोबारा देंगे 20 मिनट्स लेफ्ट, फिर 5 मिनट पहले कहेंगे गेम पैकअप, और उस वक्त तक क्या है कि बच्चा मेंटली तैयार हो चुका होगा कि अच्छा मेरा गेम बंद करने का टाइम हो गया है। मैक्सिमम वो ये करेगा कि किसी दिन 10 मिनट ऊपर ले लेगा, लेकिन वो जो 1 घंटे की आपकी बैटल है वो नहीं चलेगी। तो इसमें बच्चों को प्रिपरेशन टाइम, इसी तरह रात को सोते हुए अगर आपने 9 बजे सुलाना है तो ये नहीं है कि बच्चा कोई भी काम कर रहा है और आपने 9 बजे उनके सर पे खड़े होकर कहा 9 बज गए और फौरन लेट जाओ, ऐसे नहीं होगा। इसीलिए जैसे आपने बच्चों को ब्रश करवाना होता है, रात को आपने नाइट सूट पहनाना होता है, तो वो आप 8:30 बजे की एक्टिविटी शुरू कर देंगे कि चलें वॉशरूम में जाएं, ब्रश करें, कपड़े चेंज करें, मुंह हाथ धोएं, बड़े बच्चे हैं तो नमाज पढ़ लें और दुआएं पढ़ लें अपनी, सोने का टाइम आपका हो रहा है, तो वो बच्चा जो है उसका वो प्रेपरेशन हो जाती है, उसको ये समझ आ जाती है कि अच्छा ये मेरे सोने का टाइम है। वो आपसे थोड़ी सी जिरा ज़रूर करेगा हर दफ़ा, क्योंकि ये नेचर है हमारी, हम जो करना चाहते हैं हम उसी के मुताबिक बार बार कहते हैं कि नहीं मैंने इसी तरह के काम करना है। वो कहेगा कि नहीं आज नहीं, अच्छा आज मैं आधा घंटा लेट सो जाऊँ। आपने इसी पर रहना है, उससे सिर्फ आपको बहुत बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपकी कोई जंग नहीं चलेगी बच्चे के साथ। दूसरा ये होगा कि मैक्सिमम बच्चा आपको 10-15 मिनट ऊपर लेगा, और ज़्यादातर दिनों में आप देखेंगे कि वो बच्चा टाइम पे ही अपना काम करके सो जाएगा।
जी मैम, अक्सर ये भी तो होता है ना कि पेरेंट्स बच्चों से तो कुछ डिमांड कर रहे होते हैं कि आपने ये करना है और आपने वो करना है, लेकिन खुद वो नहीं कर पा रहे होते, या बाज़ूकात उसका ऑपोजिट ही बच्चों के सामने कर रहे होते हैं।
बिल्कुल।
तो इसका क्या रीज़न है?
इसका रीज़न यही है कि रोल मॉडलिंग सही नहीं है, बच्चों की हम फीलिंग्स भी नहीं अंडरस्टैंड कर रहे होते, और ये भी नहीं सोच रहे होते कि हम जो कर रहे हैं वो भी गलत है। और अक्सर मैंने वालदैन को ये भी देखा है कि वो बात बात पे कहते हैं अब देखे ना, मतलब मुझे तो ये करना ही पड़ेगा ना, अब देखें ना मेरे लिए तो ये मुश्किल है ना करना। लेकिन बच्चे को तो ऐसे नहीं करना चाहिए। मसलन अब देखें ना, मुझे तो गुस्सा आ सकता है लेकिन बच्चे को नहीं आना चाहिए। अब देखें ना आजकल इतनी मुश्किल ज़िंदगी है, मैं पढ़ तो नहीं सकती या मैं बुक रीडिंग कैसे करूँ, मेरे पास घर के इतने काम है, लेकिन बच्चे को तो बुक रीडिंग करनी चाहिए। या ये कि इतना अच्छा ड्रामा है या टीवी पे इतनी अच्छी चीज़ आ रही है, मैं तो छोड़ नहीं सकती, लेकिन नहीं बच्चे को तो छोड़ना चाहिए, ऐसी एग्जाम्स हैं इसको तो कुछ भी नहीं देखना चाहिए। तो हम अपने लिए एक और क्राइटेरिया रख लेते हैं, बच्चे के लिए एक और चीज़ रख लेते हैं। एक और चीज़ जिससे कि बच्चे के बिहेवियर को बहुत अच्छी तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है कि बच्चा आपकी बात मान ले, वो ये है कि बच्चे के साथ शेयर करना, बैठना, उसके साथ कभी कभी खेलना। मसलन अगर आपको लगता है कि बच्चे खेलने में इतना वक्त लगा देते हैं कि पढ़ाई की तरफ नहीं आते, तो कभी कभी आप उस खेल में उनके साथ शामिल हो जाएं, थोड़ी सा खेला उनके साथ और फिर उनसे कहा चलो अब बैठ के पढ़ते हैं, तो बच्चे फौरन आपकी बात मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। खाना खा रहे हैं तो आप उनके साथ बैठ जाएं, अगर वो रात को सोने लगे हैं तो आप कहें कि चलें मैं भी ब्रश करती हूँ साथ, और हम जो है सोने की तैयारी करते हैं। क्योंकि उनको ये लग रहा होता है कि माँ बाप का तो जो दिल चाह रहा है वो कर रहे हैं, वो ये नहीं समझ सकते कि इनके ऊपर कितनी जिम्मेदारियां हैं, वो बस ये देख रहे हैं कि माँ बाप का जो दिल चाह रहा है वो कर रहे हैं और हमारे पीछे पड़े हुए हैं कि हम जो है वक्त पे सोएं और वक्त पे जो है वो सारा काम करना शुरू कर दें। फिर ये भी होता है कि कुछ चीज़ों को एक लाइट मूड से ख़त्म किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि हर चीज में आपने डांटना ही है, और आपने उनको यही एहसास दिलाना है कि तुम तो शायद 100 साल भी ठीक नहीं होगे और तुम्हारी तो आते ही ऐसी हैं, और फलां का बच्चा देखो कितना अच्छा और उसका बच्चा देखो कितना अच्छा। आप उसको हल्की फुल्की हंसी मजाक में छोटी छोटी बातें कर सकते हैं, बच्चों के साथ स्टोरीज बना सकते हैं, बच्चों के साथ आप छोटे छोटे चार्ट लगा सकते हैं घर में कि जो पहले बेड में जाएगा उसको स्टार मिलेगा, जो पहले अपना कमरा ठीक करेगा उसको ये चीज़ मिलेगी और वो स्टार्स काउंट होंगे, या आज उसका नाम यहाँ पे लगेगा, या इस किस्म के छोटे छोटे जो एक्टिविटीज़ है वो करने से बच्चों को बहुत जल्दी बात जो है वो समझ आती है।
और इसके अलावा मैम ये भी तो होता है कि पेरेंट्स का रिएक्शन बाज मामलात में कुछ ऑपोजिट ही होता है, जिस तरह का होना चाहिए वैसा नहीं होता।
बिल्कुल।
मसलन या तो बहुत ज़्यादा रिजिडनेस शो करते हैं या बहुत ज़्यादा मामलात को बहुत लाइट ले रहे होते हैं, तो क्या करना चाहिए?
देखिए, अगर आपको लगता है कि आप अपने बच्चे के साथ बहुत से मामलात में बहुत रिजिड हो जाते हैं, आप बहुत चाहती हैं कि ऐसे ना करें। मैंने कुछ ऐसी वालदा को देखा है जो कि ना इस डिप्रेशन में चली जाती हैं कि मैं अपने बच्चे पे हाथ नहीं उठाना चाहती, उसे डांटना नहीं चाहती बात बात पे, मुझे नज़र भी आ रहा होता है कि ये उसकी उम्र की रिक्वायरमेंट है, लेकिन मुझे नहीं पता जब वो बच्चा मेरे सामने आता है कि मुझे क्या हो जाता है। अपनी फ्रस्ट्रेशन बच्चों पर ना उतारें। आपको किसी की टेंशन है, कोई काम आपका नहीं हो रहा, आप बजट के लिए परेशान हैं, आपके शौहर से कोई बात हुई है, आप अगर जॉब करती हैं वहाँ पे कोई ऐसा मामला हुआ है, रिश्तेदारों में किसी के साथ कोई ऐसी टेंशन चल रही है, तो उसकी फ्रस्ट्रेशन बच्चों तक नहीं जानी चाहिए। और उसका बेहतरीन तरीका होता है कि हमेशा ये रिकमेंड किया जाता है कि माँ को भी अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालना चाहिए, उसको भी अपने आप को बहुत सी चीज़ों से अलग करके और अपने लिए कोई एक हेल्दी एक्टिविटी रखनी चाहिए। आजकल के हम माओं को देखते हैं कि उनके पास अपने लिए कोई एक्टिविटी नहीं है। एक रिसर्च ये बताती है कि अगर हम 24 घंटे में देखें कि एक घरेलू खातून जो है वो हार्डली बच्चे को 10 से 15 मिनट दे पाती है, हार्डली जो क्वालिटी टाइम है, और अपने लिए उसके पास टाइम नहीं बचता। कई दफ़ा माएँ जो है चलते फिरते खाना खा रही होती हैं। बहुत सी माओं को जब मैं पूछती हूँ कि अच्छा आप खुद क्या खाती हैं, बच्चे को गोद में उठाया हुआ चेक करवा रही हैं और कहती हैं बच्चा मेरा बहुत कमज़ोर है, और अक्सर मैं उनको कहती हूँ कि मुझे आप इससे ज़्यादा कमज़ोर लग रही हैं कि नहीं मुझे तो टाइम नहीं मिलता, मैं तो इसके पीछे लगी रहती हूँ, मुझे तो खाने का भी टाइम नहीं मिलता, मुझे तो आराम का भी टाइम नहीं मिलता। तो अपनी टेंशन को थोड़ा सा डाइवर्ट करें, कभी थोड़ी देर के लिए कुछ किसी भी तरीके से जो कि एक हेल्दी तरीका और रिलैक्स कर लें, वॉक की आदत आप रख सकते हैं, 10 मिनट सिर्फ वॉक कर लें। थोड़ी सी कोई फिजिकल एक्सरसाइज आप ऐसी कर सकते हैं कि आपकी बॉडी में सर्कुलेशन ऐसी हो कि आप फ्रेश हो जाएं। और कुछ लोगों को रीडिंग का बहुत शौक होता है, तो आप बेशक 15 मिनट रख लें अपने लिए कि मैं रीडिंग करूं। कई लोगों को मैंने देखा है वो कहती है मैं बहुत बुक्स पढ़ती थी और मैं लिखती थी और मैं ये काम करती थी, लेकिन अब बच्चों में इतनी खप गई हूं कि अब मुझे मौका नहीं मिलता। तो ये जब अगर आप अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालेंगे किसी भी एक हेल्दी एक्टिविटी में, तो आप ये देखेंगे कि जो आप फिर बच्चों को क्वालिटी वापस देंगे ना वो बहुत बेहतरीन होगी, और उसमें आपको रास्ते बहुत अच्छे मिलेंगे कि किस तरह से बच्चों को हैंडल मैं कर सकती।
और इसके अलावा मैम देखा गया है कि आजकल के बच्चे जैसे शार्प तो बहुत ही हो गए हैं, इसके अलावा वो बहुत चूजी भी हो गए हैं चीजों के मामले में, तो पेरेंट्स क्या करें कि बच्चों को चीजें चूज करवाने में बच्चों को भी आसानी हो और पेरेंट्स को भी परेशानी का सामना ना करना पड़े।
कुछ चीजों में तो आपको बच्चों को ये चीज सिखानी है, इसको हम जिम्मेदारी का हिस्सा भी कह सकते हैं कि बच्चों को ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के आप खुद चूज करें कि आपको क्या चीज चाहिए, लेकिन वो एक लिमिट से बाहर नहीं होनी चाहिए, उम्र के मुताबिक होनी चाहिए और उसी के अंदर रहते हुए बच्चों को पता होना चाहिए। मसलन अगर आप बाजार जा रहे हैं और आपको लगता है कि बच्चे बहुत चूजी हैं, तो आप उनको टाइम दे सकते हैं, मसलन हम एक घंटे के लिए आए हैं और इसी में अब आपने ये चीज लेनी है और बजट आपका इतना है, ये नहीं है कि फिर वो जो मर्जी ले रहे हैं, तो उससे फिर क्या होता है कि बच्चे जरा लिमिट हो जाते हैं। लेकिन ये जरूर याद रखिए कि जब आप ऐसी चीजों पे तरबियत बच्चों की करना चाह रहे हैं तो जो फिर आप असूल बच्चों को उस वक्त देते हैं उसको फॉलो भी करना है। आपने कह दिया कि हम एक घंटे ही शॉपिंग करेंगे, जो आपको चाहिए वहां से ले लें, और आपने मसलन 1000 रुपए में ये चीज लेनी है। अब बच्चे ने 5000 की चीज पसंद कर ली और उसने 3 घंटे लगा दिए, आप बात बात पे उसको कह तो रही हैं बस एक घंटा था बस एक घंटा था, लेकिन आप उठ नहीं रही हैं, तो फिर बाद में आप फ्रस्ट्रेट होके फिर बच्चे को डांटेंगी। तो मकसद ये कि 1 घंटे बाद आपने निकल आना है, 1000 से ज्यादा की चीज है तो आपने नहीं लेके देनी, जब तक कि आपको वाकई यकीन हो कि हाँ ये चीज जो है बेशक 1000 से 200-300 रुपए ऊपर चली गई है, क्वालिटी की है और बच्चे ने अच्छी चॉइस की है। फिर बच्चे को उसकी वजूहात समझाएंगी कि आपने चीज जो अच्छी सिलेक्ट की है, वैसे तो मैंने सिर्फ इसके लिए 1000 रुपया देना था, है ये 1200 की लेकिन ये अच्छी लग रही है तो चलो हम ले लेते हैं। लेकिन जब आपको लगे कि नहीं बच्चा अपनी बाउंड्री से बाहर जा रहा है, तो आप उसको साफ बता देंगे कि नहीं बेटा ये पॉसिबल नहीं है, ये काम हम इस वक्त नहीं करेंगे। ममता को सही जगह इस्तेमाल करना।
और इसके अलावा मैम बच्चों को ये नहीं समझ आ रहा था कि उनके लिए क्या काम जरूरी है, काम या खेल, तो पेरेंट्स जो हैं माँ या बाप वो कैसे बच्चों को बताएं कि क्या डिफरेंस है, आपके काम की कितनी अहमियत है और खेल को एक टाइम तक ही आपने खेल सकते हो।
हाँ, इसमें भी बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं वालदैन और बच्चों के दरमियान। एक तो ये बात है कि बच्चों को थोड़ी सी डिसिप्लिन लाइफ की आदत डालें, उनको प्लानिंग करके दें पूरे दिन में, उनके ज्यादातर काम जो है किसी दायरा कार में होने चाहिए। मसलन सुबह स्कूल जाने से पहले आपने क्या क्या काम करने हैं, स्कूल से आके एक रफ टाइम टेबल जरूर होना चाहिए, इस टाइम पे आप पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद अपना बैग पैक करके रखेंगे, फिर आप उसके बाद ये काम करेंगे, इतनी देर आप जो है खेल सकते हैं, इतनी देर अगर आप फ्री हैं तो बुक्स पढ़ सकते हैं, उसमें आप जो भी उस टाइम फ्रेम में जो है वो चीजें जो है वो करते चले जाएं। तो बच्चों को जब कोई दायराकार दिया जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता बच्चों को उसकी आदत पड़ जाती है। दायराकार देते हुए ये याद रखना जरूरी है कि बच्चों को रिमाइंडर आपको बार बार देना होगा, बार बार बताना होगा कि इस वक्त हम ये काम करेंगे, इस वक्त हम ये काम करेंगे, इस वक्त हम ये चीजें करेंगे। और उसमें जब भी वो बच्चा फिर आपके पास आता है, मसलन पढ़ने का वक्त है और वो आके आपको कोई बात बताना शुरू कर देता है, तो आप उसे पूछेंगे क्या ये इम्पॉर्टेंट है, क्या ये बात इसी वक्त करनी ज़रूरी है, तो अगर वो कहता है नहीं इम्पॉर्टेंट नहीं है इस वक्त नहीं, मैं आपको बाद में भी बता सकता हूँ या बाद में भी हम कर सकते हैं, तो आप उसे कहेंगी फिर हम इसको बाद में करेंगे, उसको फौरन टोक के वहां पूछ लेना है। कई दफा बच्चे आपको कहेंगे कि हाँ ये बहुत जरूरी है, ये मुझे अभी करनी है, तो फिर आप उसकी बात सुन लेंगे, और अगर आपको लगता है कि उसमें वो बात जो कह रहा है वो सही नहीं है तो आप उसे बता देंगे। छोटी सी मिसाल इसमें बहुत कॉमनली पेरेंट्स के साथ होती है, आप घर से बाहर किसी काम के लिए गए हैं और बच्चों के आपको मोबाइल पे फोन पे फोन आना शुरू हो जाते हैं, छोटा सा लड़ाई झगड़ा भी हुआ, भाई ने मार दिया, वो मेरी कॉपी नहीं मिल रही जो कि शायद उनको 10 दिन बाद चाहिए थी, और वो फलां का फोन आया था वो कह रहा था कि आपने परसों हमारे घर आना है, और आप कहीं कई दफा गाड़ी चला रहे हैं, कई दफा आप कहीं जरूरी कोई सौदे ले रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं या जॉब पे हैं खवातीन, उनको बहुत ये मसला होता है। अब बात यह है कि उस वक्त इंसान को इतना गुस्सा चढ़ता है कि ये कोई जरूरी चीज थी जिसके लिए आपने पैसे भी जाया किए, वक्त भी जाया किया, और मैं जो काम कर रही थी उससे मेरा फोकस भी हटाया। तो बच्चों को आदत डालें इसी तरह से कि जैसे ही उनका फोन आए, अब उन्होंने बात शुरू की तो आपने पूछा क्या ये इंपॉर्टेंट है, तो बच्चे ने अगर कहा इंपॉर्टेंट है तो फौरन सुनी, अगर इंपॉर्टेंट नहीं है तो बंद कर दिया। بات سنے بغیر بند کر دیا کہ سوری, درمیان میں کاٹ دیں آپ فون اور ان کو بتا دیں کہ یہ امپورٹنٹ بات نہیں ہے, یہ بات جب میں گھر آؤں گی تب ہم کریں گے. تو اس سے پھر بچے نا خود اینالائز کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ کون سی بات امپورٹنٹ ہے, کون سی بات کرنی چاہیے, کون سی بات نہیں کرنی چاہیے.
اور اس کے علاوہ میم یہ ہوتا ہے کہ بچے اگر کوئی کام شروع کر دیں تو پھر اس کو ختم کرنے کا نام نہیں لیتے. سپوز اگر ان کو کہیں پارک وغیرہ میں لے جائیں تو وہاں سے وہ آنے کا نام نہیں لیتے. تو پیرنٹس کیسے سمجھائیں کہ آپ کے لیے صرف اتنا ٹائم ہی ہے کہ آپ پارک میں رہیں؟
ایک تو یہ کہ خود انوالو ہوں, وہی چیز کہ جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے. دوسرا یہ کہ جو ہم نے ایک اور بات بھی کی تھی کہ بچوں کو پریپیئر کریں, پریپریشن ٹائم پہلے بتا دیں. مثلاً آپ نے 10 دفعہ سلائڈ لینی ہے, اب وہ 10 کے 12 دفعہ لے لیں گے لیکن پھر وہ یہ نہیں کریں گے کہ 50 دفعہ لیں, کیونکہ ان کو اندازہ ہو چکا ہے کہ ہم نے 10 دفعہ لینی ہے اور آپ ہر دفعہ کاؤنٹ کر رہے ہیں 1 2. اور اگر بچہ بیہیو کر رہا ہے آپ اسے کہیں چلے میں آپ کو بونس 5 دے رہی ہوں, پھر آپ ان کو واپس لے آئیں. تو جب ان کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم جو کریں گے فالو اس کا ہمیں فائدہ ہوگا, پھر آپ اگلی دفعہ لے جاتے وقت پھر ان کو ریمائنڈر دیں گے, یاد دلائیں گے کہ آپ پچھلی دفعہ پارک گئے تھے, آپ نے بہت اچھی طرح بیہیو کیا, آپ نے جتنی دفعہ میں نے بتایا سلائڈ لی اور آپ نے اچھی طرح کھیلا, آپ نے کسی کو پش نہیں کیا, کسی کو تنگ نہیں کیا, تو آج ہم پھر جائیں گے پارک. آج ہم مثلاً 10 منٹ زیادہ لگائیں گے. جس دن ٹائم نہیں ہے تو آپ بتائیں گے کہ آج ٹائم کم ہے, آج ہم تھوڑی دیر کے لیے جائیں گے, نیکسٹ ٹائم جب ہمیں وقت ہوگا تو ہم زیادہ دیر کے لیے جائیں گے. تو پھر بچوں کو یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ ہمارے والدین جو ہیں نا وہ بہت ریجڈ نہیں ہیں, ان میں فلیکسیبلٹی ہے کہ جب موقع ہوتا ہے تو وہ ہمیں زیادہ ٹائم دے دیتے ہیں, جب موقع نہیں ہوتا تو پھر وہ ٹائم نہیں دیتے.
میم آپ نے اتنی ساری باتیں بتائیں کہ بچوں کے مختلف ایشوز کو کیسے ہینڈل کیا جا سکتا ہے, لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پیرنٹس تو اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں, ماں اور باپ, کہ بچہ صحیح ہو جائے اور بچہ ان کی بات مان لے, لیکن بچے بعض ایسے ہوتے ہیں کہ بچے پیرنٹس کا کہنا نہیں مانتے, ٹائم ٹیبل بھی نہیں فالو کر رہے ہوتے اور اپنی چیزیں بھی اسی طرح توڑ رہے ہوتے ہیں, پڑھ بھی نہیں رہے ہوتے. تو ایسی صورت میں کیا نتائج سامنے آ سکتے ہیں اور پیرنٹس کو اس ٹائم پہ کیا ان کو پنش کرنا چاہیے, مارنا چاہیے, یا کیا کر سکتے ہیں پیرنٹس؟
اس میں نا ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں لیٹ دیم لرن تھرو نیچرل کانسیکوینسز. ایک ہوتا ہے کہ آپ نے ان کو دھمکیاں دینی شروع کر دی, ایک ہوتا ہے آپ نے ان کو مارنا شروع کر دیا. اچھا, ہم دھمکی دیتے ہیں, ہم مارتے ہیں, ہم ڈانٹتے ہیں اور اس کے بعد بالکل وہی کام کر دیتے ہیں ان کے لیے جس پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ میں آئندہ تمہیں کبھی نہیں کر کے دوں گی. آپ نے ہوم ورک کی مثال دی, آپ دیکھیں والدہ ہوم ورک کراتی ہے اور بچے کیا کرتے ہیں, ان کو کہتی ہے کہ ٹائم ٹیبل رکھ لو, ساری چیزیں رکھ دو. بچہ کتابیں بکھیرے رکھتا ہے, ویسے ہی سو جاتا ہے. اب صبح اٹھ کے اسکول جانے سے پہلے ایک گھر میں ہنگامہ, وہ کاپی نہیں مل رہی, کتاب نہیں مل رہی. اور والدہ نے رات کو سونے سے پہلے بھی کہا ہوتا ہے کہ اگر تمہاری کوئی چیز نہ ملی تو میں نہیں ڈھونڈ کے دوں گی, لیکن صبح وہ کیا کرتی ہیں, ناشتہ چھوڑ, چیزیں چھوڑ, اسکول کے لیے لیٹ ہو رہے ہیں اور وہ ڈھونڈ رہی ہیں پاگلوں کی طرح کہ وہ کدھر گئی اس کی کتاب اور کاپی. تو بچہ اس طرح کبھی بھی وہ کام نہیں کرے گا. آپ کا کیا طریقہ ہونا چاہیے, آپ نے بچے کو ایک اصول دے دیا اور اس کے بعد آپ نے بچے سے کروایا, اس کے لیے جتنی ہم نے ٹیکنیکس کی ابھی بہت ساری بات کی, اس کو پریپریشن ٹائم دیا, بار بار بتایا ٹائم ٹیبل رکھو, ٹائم ٹیبل رکھو. بچے نے جب رکھ لیا اس کو شاباش دی, اس کو آپ سٹار دے سکتے ہیں اور اس کو آپ پلاننگ میں بتا سکتے ہیں کہ تب تک آپ اور کوئی کام نہیں کر سکیں گے. مثلاً بچہ کہتا ہے میں نے ہوم ورک کر لیا, آپ نے کہا جب تک مجھے بیگ پیک نہیں نظر آئے گا اور فلاں جگہ پڑا ہوا نظر نہیں آئے گا آپ نہیں کھیل سکتے. اب اس نے وہ سارا کام کیا لیکن فرض کریں اس میں سے کوئی چیز چھوڑ دی, اور آپ نے اس کو بتایا تھا کہ آپ نے یہ کام کر کے رکھنا ہے. اب وہ صبح جب اٹھتا ہے اور وہ ایک ہنگامہ مچاتا ہے کہ مثلاً میری پینسل نہیں مل رہی, تو آپ اس کو کچھ نہیں کریں گی, آپ اس کو پینسل نہیں ڈھونڈ کے دیں گی, آپ اس کو کاپی نہیں ڈھونڈ کے دیں گی اور آپ اسے جانے دیں گی اسکول اسی طرح, چاہے وہ روتا ہوا جائے. ایک دن اپنے آپ کو برداشت کر لیں, اگر اس دن ٹیچر سے ڈانٹ بھی پڑتی ہے پڑھنے دیں. کیوں, اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بچے کو آئندہ کے لیے یاد رہے گا کہ اگر میں غلط کام کروں گا تو میری والدہ مجھے ہر دفعہ سپورٹ نہیں کریں گی اور مجھے یہ کام کرنا ہی ہوگا. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کسی دن بچہ بہت تھکا ہوا ہے اور وہ آپ کو کہتا ہے کہ ماما آج میں بہت تھکا ہوں, آپ ٹائم ٹیبل رکھ دیں گی؟ اب آپ نے یہ نہیں کرنا کہ آپ کے نہیں تم نہیں رکھنا ہے. اس دن والدہ کہہ سکتی ہیں کہ اچھا بیٹا آپ سو جاؤ میں رکھ دیتی ہوں. ایگزامز ہیں, بچہ کہہ رہا ہے کہ میں پڑھ رہا ہوں, تو آپ کہیں چلو آپ پڑھائی کرو میں آپ کا ٹائم ٹیبل رکھ دیتی ہوں. تو کبھی کبھار اس کو آپ نے ہیلپ کر دینی ہے. کبھی 6-8 مہینے میں صبح اس کی کوئی چیز نہیں مل رہی اس کو نکال کے دے دینی ہے, لیکن روٹین میں نہیں. روٹین میں اگر آپ نے یہ کام کیا تو پھر بچہ وہ چیز نہیں سیکھے گا. آپ نے اس کو کہا کہ اگر آپ پانی گرائیں گے تو آئندہ اس گلاس میں پانی نہیں ملے گا, اس نے گرا دیا, اب نیچرل کانسیکوینسز کے ہیں, اب وہ گلاس اسے نہیں ملے گا. وہ آپ کو 100 دفعہ بھی سوری بولے آپ کہ نہیں سوری بیٹا اب آپ کو نہیں یہ ملے گا, اس سے کیا ہوگا کہ اب اس کو آئندہ کے لیے اور بہت سے کام کرتے ہوئے سمجھ آ جائے گی کہ اگر مجھے کسی چیز کے بارے میں وارن کیا گیا ہے میں نے اس کام کو نہیں کرنا. لیکن फिर मैं वही बात कहूंगी कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि अगर बच्चे ने कभी मांग लिया तो आपने दे भी दिया, लेकिन रूटीन में आपने कभी ये काम नहीं करना कि आप सारा दिन उसको एक बात बता रहे हैं, वो गलतियां कर रहा है, वो सुन नहीं रहा, और फिर आप उसे हर दफा वही काम करने दे रहे हैं। उसके दोस्तों ने आना है, आपने उनको पहले बता दिया और दोस्त को भी साथ खड़ा करके बता दिया कि आप लोग खेल लें, और खेलने के बाद आपने सारा ये कमरा खुद समेटना है। होता क्या है, खेला अपने दोस्तों के साथ, दोस्त वापस चला गया और बच्चे कहते हैं अब हम थक गए हैं और आप कमरा समेट रही हैं, आप हर दफा उन्हें डांट रही हैं, अगली दफा उनका दोस्त आ रहा है फिर बता रही हैं, और वही साइकिल चल रहा है। तो अगर बच्चों ने अपना कमरा नहीं समेटा और अगले दिन आपसे कहते हैं कि हमारा दोस्त आ जाए, तो आप कहेंगे नहीं, आज दोस्त आपका नहीं आ सकता। और अगर वो बच्चा आ भी जाए कि आंटी मैं आ जाऊं, तो आप कहेंगे नहीं बेटा आज आप नहीं आ सकते, कल आप लोगों ने कमरा नहीं समेटा था, आज मैं अलाउ नहीं कर सकती। इसमें कोई थ्रेट नहीं है कि खबरदार जो आए, धमकी का स्टाइल नहीं है, सादा मैटर ऑफ फैक्ट आपने सिर्फ ये बताया कि क्योंकि आपने ये काम नहीं किया था इसलिए आपको इस चीज़ की इजाज़त नहीं मिल सकती। अब वो बच्चे कहेंगे कि आज हम जरूर समेटेंगे, लेकिन उस दिन इजाज़त नहीं देनी, आपने कहना किसी और दिन से। अब आपने किसी और दिन उनको एक मौका दे दिया, चार पांच दिन बाद खुद बुलवा लें कि जाओ अपने फ्रेंड को बुला लो और आप लोग खेल लो, कमरा समेटना है। आप नोट करेंगे कि बच्चे उस दिन कमरा जरूर समेटेंगे। ये जरूर हो सकता है कि वो दो तीन चीजें इधर उधर बिखरी रह जाएं जो आपको करनी पड़े, क्योंकि बच्चे हैं ना, आपके लेवल पे हो सकता है उतना काम ना कर सकें, लेकिन जब वो समेटेंगे तो अब आप अगली दफा उनके दोस्त को आने देंगे।
जी रिसर्स, आज हमारे साथ मौजूद रहीं डॉक्टर कमल कैसर, और बात हुई बच्चों के मुख्तलिफ इश्यूज से रिलेटेड कि किस तरह उन इश्यूज को हैंडल कर सकते हैं पेरेंट्स, माँ और बाप एक साथ। और मेरे ख्याल में ये प्रोग्राम काफी फायदेमंद साबित हुआ होगा और होगा हमारे लिसनर्स के लिए जो कि पेरेंट्स हैं, और वो लिसनर्स जो के फ्यूचर में पेरेंट्स बनेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर कमल कैसर कि आप यहाँ पर आई और आपने बहुत डिटेल के साथ बताए बच्चों के वो इश्यूज जिनको हैंडल करना बाज़ूकात वालदैन के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। थैंक यू।